किस तरह से क्या लिखा कि अमन बिक रहा है ये चमन बिक रहा है, कि अमन बिक रहा है ये चमन बिक रहा है। अरे बुरा ना मानो तो खुले लफ्जों में कह दूं कि कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है, मेरा ये वतन बिक रहा है। आइए इस तरह से क्या लिखा है इस रागिनी के माध्यम से। सरदार छपना चाहिए रे। कौन कौन चाहता है कि भगत सिंह की फोटो नोट पे छपे, एक बार हाथ खड़े करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बताया कि आदरणीय महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिला हुआ है। हम ये नहीं कहते कि भगत सिंह को भी राष्ट्रीय पिता का दर्जा दो। जब महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिल सकता है तो शहीद आजम वीर भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। आइए किस तरह से क्या लिखा इस रागिनी के वजन से।
भगत सिंह ने हाथ कटे सरकार झटका चाहिए रे।
और जिन्होंने इस रागनी की भरवाइश की, आदरणीय भोले भैया गांव वैना से चल के हमारे बीच में आए, वो भी इस रागनी पे खुश होकर 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। भोले भैया के लिए तहे दिल से धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां। आदरणीय दादा भूदेव जी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। पंडित जी मानपुर से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। दादा भूदेव का तहे दिल से धन्यवाद। क्या लिखा दूसरी लाइन में मास्टर हरिशंकर गौड़ जी हमारे बीच में पहुंचे, एक बार जोरदार तालियां के लिए हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथिगण हैं।
और
मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगी कि इस रागनी को सुने, उसके बाद आपका मान सम्मान किया जाएगा, आपका यहाँ पे स्वागत भी किया जाएगा। आइए
आदरणीय हमारे बीच में चौधरी दिनेश एडवोकेट, जिला पंचायत सदस्य और मंत्री पिछड़ा वर्ग भाजपा अलीगढ़ से, मैं चाहूंगा दोनों भाइयों को एक बार जोरदार तालियां चाहिए, जोरदार।
बताए प्रेमी श्रोताओ, अच्छा एक बात बताओ, रागनी ठीक लग रही है आपको? किस किस को अच्छी लग रही है, हाथ खड़े करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बताया किसी शायर ने लिखा कि माना कि मैं सम्मान करती हूँ अरे गांधी तेरी सीखों का, कि माना कि मैं सम्मान करती हूँ अरे गांधी तेरी सीखों का, पर मेरा दिल तो कर्जदार है भगत सिंह की चीखों का। जने कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि अकेले चरखे से आजादी आई थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि सिर्फ एकमात्र गांधी जी की वजह से इस देश को आजादी मिली। मैं अपने मुख से ये नहीं कहती कि गांधी जी ने हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है गांधी जी ने, लेकिन अगर अकेले होते तो शायद इस देश में आजादी नहीं आती, क्योंकि एक उंगली से कभी काम नहीं होता, पांचों उंगलियों से काम होता है। खाना खाओगे तो एक उंगली से कैसे खाओगे, सिर्फ पूरे हाथ से ही तो खाना खाओगे। इसलिए सभी के सहयोग से इस देश में आजादी आई। कहा कि इस देश में आजादी लाने के लिए किसी औरत का बेटा नहीं रहा, किसी बहन का भाई नहीं रहा, किसी औरत का सुहाग नहीं रहा। पता नहीं कितने नौजवानों ने फांसी के फंदे को चुमा, कितने नौजवानों ने सीने पे गोली खाई, जब जाके आजादी आई अकेले चरखे से आजादी नहीं आई। और जवाब दिया कवि ने कि इस देश में कैसे आजादी आई। आप सभी को अच्छी लगे तालियां चाहूंगी। कहा कि हिंसा अगर पहले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, कि हिंसा अगर पहले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन गर कायर नहीं बनता, गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का, उस नेता और भगत सिंह का कर बलिदान नहीं होता, तो चाहे कितने गांधी मर जाते आजादी का सैगान नहीं होता, आजादी का सैगान नहीं होता। किस तरह से दूसरी लाइनों में क्या लिखा,
सरकार झटका चाहिए।
सोचा, ना ही अपने परिवार के बारे में सोचा, सोचा तो इस देश के बारे में सोचा। आज भी हमारे नौजवान इस देश के लिए जान दे जाते हैं सीमा के ऊपर। कुछ साल पहले की घटना है, आप सभी जानते हो, उरी हमले के अंदर पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने हमारे 18 सैनिकों को मार दिया, तो कैसे। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारी सेना को आदेश दिया और हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके घरों में घुस के उनके 50 आतंकवादियों को मारा। ईंट के जवाब पत्थर से दिया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी सेना ने। लेकिन फिर भी जो विपक्ष के पार्टियों के नेता होते हैं ना, वही नौजवानों की जो इस देश के लिए जान लेकर जाते हैं, इनकी बोली लगाते हैं, कहते हैं क्या हुआ नौजवान मर गया। अरे हमारी सरकार ने एक नौजवान की कीमत 5 लाख रुपए दी है। दूसरी पार्टी का बोलता है कि अगर तुम्हारी सरकार ने 5 दिए हैं तो हमारी सरकार ने 8 दिए हैं। तीसरा भी चुप नहीं रहता क्योंकि पार्टियां तो काफी हैं इस देश में। तीसरा बोलता है कि अगर तुम्हारी सरकार ने 5 और 8 दिए हैं तो हमारी सरकार ने 10 लाख रुपए दिए हैं। आप सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे एक नौजवान की कीमत 5 या 8 या 10 लाख रुपए है? नहीं है। बड़े अच्छे कवि हुए विनीत चौहान जी, उन्होंने जवाब दिया और अच्छे लगे तो तालियां चाहूंगी उन नौजवानों के लिए जो इस देश के लिए अपनी जान देकर गए। तालियां चाहूंगी इस पार्टी के लिए जिसने इस देश का नौजवानों को खुली छूट दी कि अपने साथियों की मौत का बदला तुम ले सकते हो। कहा कि सुनो, तुम इन नौजवानों की कीमत लगाते हो कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। अरे उस औरत के दिल से पूछो जिसने अपना पति खोया हो, जिसने अपना सब श्रृंगार खोया हो, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को और मानव कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को और मानव कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। तो लो हम 20 लाख देते हैं। अरे तुम किस्मत के हैं तो को, अरे हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को। अरे तुम ये नहीं जानते कि जिस माँ ने अपना बेटा खोया हो उस माँ का दर्द क्या होता है, जिस पिता ने अपना बेटा खोया हो उस बाप का दर्द क्या होता है। अगर कीमत ही चुकाना चाहते हो तो अपने बेटे को सीमा पे लड़ने के लिए भेजो, खुद पता चल जाएगा कि एक औलाद की कीमत क्या होती है, एक बेटे का प्यार क्या होता है। एक बार भारतीय जनता पार्टी के लिए जोरदार तालियां, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। कुछ लोग ये सोचते हैं कि महंगाई बढ़ गई, क्योंकि इधर उधर की बातें करने वाले भी इस देश में बहुत है। कोई इंसान अगर अच्छे कार्य करने की सोचता है ना तो उसको करने नहीं देते, उसके पीछे लगे रहते कि ये तो बिगड़ गया, इसने तो देश बिगाड़ दिया, तो देश को लूट के खा गया। लेकिन अगर मेरी मानो तो आदरणीय नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए सबसे नंबर वन सबसे अच्छी है। चाहिए किस तरह से गाड़ी
और गाड़ी पर खुश होकर श्रीमान बड़े भाई चौधरी दिनेश एडवोकेट, जिला पंचायत सदस्य एवं मंत्री पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी, इस देशभक्ति नागरिक पर खुश होकर 500 रूपए देते हैं। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
आदरणीय बोले भैया जी गांव वैना से, वो भी 500 रूपए का पुरस्कार देते हैं। जोरदार तालियां गाड़ी खाते श्री राय में।
सरदार चलना चाहिए।
चौधरी से पूछना चाहूंगी, राजनीति लग रही है आपको? आनंद आ रहा है? देशभक्ति जाग रही है आप सभी के अंदर? बताया, कुछ लोग मेरे से भी कहते हैं कि मैडम आप इतना चैलेंज क्यों करती हो मंच पे, कोई आपको मार देगा। लेकिन प्रेमी श्रोताओ, हम इस देश के, इस भारत माँ के पूत हैं, इस भारत माँ के लाल हैं। अगर इस भारत, एक कलाकार का फर्ज ये होता है कि अपनी श्रोताओं को इस देश के लिए जागृत करें। अगर इस देश के लिए कुछ नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। हमारे बस की जितना काम है हम उतना करते हैं। हम अपने श्रोताओं को देशभक्ति गीत गाकर जागृत कर सकते हैं तो उसमें क्या हर्ज है? हर इंसान को होता है कि इस देश के लिए कुछ ना कुछ करो। अरे हम तो फिर भी अपने घरों में चले जाते हैं रात को, अपने बच्चों के पास रहते हैं, अपने घरवालियों के पास रहते हैं, अपने पति के पास रहते हैं। लेकिन उन नौजवानों से पूछो, हमारे पुलिस वालों से पूछो, जो त्योहार पे भी अपने घर नहीं जा पाते, अपने बच्चों के पास नहीं जा सकते। एक बार उन नौजवानों के लिए तालियां चाहूंगी, हमारे पुलिस प्रशासन के लिए तालियां चाहूंगी, जो देश में रहकर हमारे पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा करते हैं और देश की सीमा पर जाकर हमारे नौजवान हमारे लिए रक्षा करते हैं। लेकिन फिर भी बड़े दुर्भाग्य की बात है प्रेमी श्रोताओं, हम इस देश को अपनी भारत माँ कहते हैं। एक पर वो हाथ खड़े करो जो इस देश के लिए जान देने को तैयार है। हम सभी इस देश के लिए जान देने को तैयार है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस देश को हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उसी देश में कुछ गद्दार भी बसे हुए हैं। और ऐसे ऐसे गद्दार बसे हुए हैं जो खुलेआम संसद के अंदर ये बोल देते हैं कि चाहे मेरे गर्दन पर छुरी रख दो लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हैदराबाद का सांसद है वो ओबीसी, बड़े संसद में बोल दिया कि चाहे मेरी गर्दन पर छुरी रख दो लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे जो इंसान देश का नमक खाता हो, जो इंसान देश में रहता हो और फिर भी भारत माता की जय ना बोले तो क्या ऐसे इंसान को देश में रहने का अधिकार है? नहीं है। बड़े अच्छे कवि हुए मुस्लिम समाज के, उन्होंने जवाब दिया और जवाब अच्छा लगे तो तालियां चाहूंगी कि कहा सुन, कि तूने कहा सुना हमने, गौर फरमाइएगा सभी, कि तूने कहा सुना हमने अब मन टटोल के सुन ले तू, कि तूने कहा सुना हमने अब मन टटोल के सुन ले तू, सुन सुन और गद्दार ओबीसी कान खोल के सुन ले तू, रे तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, रे तूने हिम्मत कैसे की मेरी माँ की जय नहीं लगाने की। जिस दिन भारतवासी संसद में, जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बन के दौड़ेगा और तू तो क्या ओबीसी, तेरा अब्बा भी वंदे मातरम बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा। अरे तू नहीं जानता हम भारत माता के लाल हैं, लेकिन जिस दिन अपनी पे आ गई ना, तेरा अब्बा भी तेरे बच्चे भी बड़े बड़े वंदे मातरम मिल देंगे और नजर नहीं आएगा कुछ उनको, क्या दिखाती भाई तुम्हें। नाम नाम की कलाकारी भी थी, और अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा तो ये कहोगे शाम के वक्त जब कार्यक्रम खत्म होगा कि वही कलाकार तो छोटे थे लेकिन कलाकारी बड़ी सॉलिड थी, बड़ी तगड़ी थी। क्या लिखा कि कवि ने ये बताया कि कलाकार को ऐसी कलाकारी करनी चाहिए जिससे अपने श्रोताओं का दिल खुश हो जाए, अपने श्रोताओं का पेट भर जाए। कैसे? जो इस देश से प्यार करता है। हमारी माता बहने तुम तो इस देश की वीरांगना हो, हाथ कैसे नहीं खड़े कर रहे? अरे लोग इस देश के लिए जान दे जाते हैं, फिर तुम हाथ खड़े नहीं कर सकते इस देश के लिए? बिल्कुल सीधे दोनों हाथ। जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो अपने हाथ खड़े करेगा, जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो अपने सीधे हाथ खड़े करेगा, और जो यहाँ पे पाकिस्तानी बैठा हुआ उससे मैं हाथ खड़े करने के लिए नहीं कहूंगी। सभी को हाथ खड़े कर कुछ भगत सिंह को श्रद्धांजलि देनी है और कहना है दोनों तालियां बजाकर दोनों हाथों से मेरे साथ मिलकर मेरे साथ बैठाएंगे बिल्कुल सीधे हाथ। मोटा ऊपर
जोड़ा ताली।